HD Smartcast.
You are listening to an HD Smartcast original.
October is here और क्रिप्टो वेरिएंट के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बेयर मार्केट के बारे में। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि अक्टूबर में बेयर मार्केट क्यों? क्योंकि पहला रीजन तो ये कि हम बेयर मार्केट में ही हैं, और दूसरा रीजन हमें हमारे गेस्ट बताएंगे। आज हमारे शो में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, जिनका नाम है निखिल। एंड निखिल हमें बताने वाले हैं बेयर मार्केट के बारे में, बट नॉट एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, मोर एज अ डेटा एनालिस्ट। जी हाँ, निखिल की स्पेशलिटी ये है कि वो डेटा को एनालाइज करते हैं और वो डेटा को क्यूरेट करते हैं मल्टीपल डिफरेंट सोर्सेज से, और उस हिसाब से वो अपने एनालिसिस को आगे रखते हैं और उस एनालिसिस को यूज करके क्रिप्टो में काफी अच्छे रिजल्ट्स जनरेट करते हैं। बाय प्रोफेशन निखिल इज अ डिजिटल मार्केटियर एंड बाय क्वालिफिकेशन ही इज एन इंजीनियर, बट फिर भी वो क्रिप्टो को अच्छे से समझते हैं एंड ही अंडरस्टैंड्स क्रिप्टो इन अ वे जो मैंने बहुत ही कम लोगों को देखा है। तो वेलकम टू द शो निखिल।
थैंक यू सीजन फॉर इनवाइटिंग मी हियर।
या सो शुरू करते हैं निखिल, आप ये बताइए कि बेयर मार्केट को आपने कैसे समझना स्टार्ट करा, क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, एंड अभी के हिसाब से 2022 में बेयर मार्केट को लेकर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है?
बेसिकली बेयर मार्केट जो आती है उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि रियल वैल्यू ऑफ मनी निकल के आए, टेक्नोलॉजी निकल के आए और प्रोजेक्ट की रियल वैल्यू निकल के आए। बिकॉज इन बुल मार्केट क्या होता है कि हर प्रोजेक्ट को पंप मिलता है, फंडिंग मिलती है, तो इस रीजन से वो अप जाते हैं, बट उसके रियल वैल्यू क्या है वो लोगों को नहीं पता होती। तो रियल वैल्यू जो पता चलती है प्रोजेक्ट की वो बेयर मार्केट में ही पता चलती है।
ओके, तो जैसा आप बोल रहे हैं रियल वैल्यू, तो क्या ये रियल वैल्यू डेवलपमेंट के टर्म्स में है या ये रियल वैल्यू क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट के टर्म्स में है? किस टर्म में ये रियल वैल्यू को आप डिटरमाइन करते हैं?
इसकी रियल वैल्यू ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि वेब 3 बिटकॉइन का मतलब यही है कि वो आप कमिंग ईयर्स में न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे लोग, लाइक वेब 3, मेटावर्स, NFT मार्केट। सो इसमें यही आना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे है प्रॉब्लम।
ओके ओके, गॉट इट। तो अभी अगर हम देखें तो 2022 बिटकॉइन का थर्ड बेयर मार्केट है, राइट? तो इससे पहले के जो बेयर मार्केट रहे तो क्या उनका रीजनिंग भी यही था? और अभी जैसे हम बोलते हैं बेयर मार्केट आया तो काफी लोग बोलते हैं कि इस बार इट्स डिफरेंट, आपका उस पे क्या ओपिनियन है?
क्या डेफिनेटली ये बेयर मार्केट जो है ये बहुत डिफरेंट है पास्ट बेयर मार्केट से, और अभी तक हमने सिर्फ दो बेयर मार्केट देखी है जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है, 2014 का और 2018 का। तो हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स ऐसी हैं बेयर मार्केट की जिसके बेसिस पे हम थर्ड बेयर मार्केट की कुछ प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, और वो हम आगे भी बात करेंगे कि वो क्या क्या डाटा है। तो हर बेयर मार्केट का रीजन हर टाइम अलग होते हैं, इस बार बेयर मार्केट के रीजंस लिटिल बिट डिफरेंट होंगे और पहले जैसे नहीं होंगे डेफिनेटली।
ओके, तो आपके हिसाब से अगर कोई न्यूबी है उसे बेयर मार्केट समझना है तो उसे कहां से डेटा क्यूरेट करना चाहिए और क्या पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए?
बेयर मार्केट में पहले ही कोई न्यू पर्सन एंटर करता है तो पहले उसको टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए कि ब्लॉकचेन वर्क कैसे करती है, और जो भी टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे लेयर 1 लेयर 2, और लेयर 1 के क्या प्रोजेक्ट्स में क्या प्रॉब्लम थी जिनको वो सॉल्व करके वो इतने बिग बने, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये आता है कि फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस प्रोजेक्ट के बैक कौन कर रहे हैं, कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं, नंबर ऑफ होल्डर्स कितने हैं, और उस प्रोजेक्ट की बेस लाइन किस प्रोजेक्ट पे है, जैसे BSC चेन पे, पैनकेक स्वैप है, ऐसे सिमिलरली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का बेस लाइन क्या है।
ओके, तो आपका मतलब ये है कि जितने भी हम प्रोजेक्ट्स देखते हैं हमें उसका एक फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि करंट प्राइस कितना है, करंट मार्केट कैप कितनी है, स्पेशली अगर हम बेयर मार्केट में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बोलते हैं कि सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट ही सर्वाइव करेंगे।
एग्जैक्टली, बिकॉज बेयर मार्केट में वही प्रोजेक्ट सर्वाइव करेंगे जिनकी रियल कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या उनका फंडामेंटल कुछ ऐसा है जो फ्यूचर में बहुत सपोर्ट करेगा मार्केट को या टेक्नोलॉजी को, अदरवाइज दे विल नॉट सर्वाइव इन द बेयर मार्केट।
ओके, गॉट इट। तो अभी अगर हम देखें 2022 बेयर मार्केट को लेके, तो आपने अपने एनालिसिस में से क्या पॉइंट्स नोटिस करे हैं जो इस बेयर मार्केट को हमारे यूजर्स या हमारे लिसनर्स को समझाने में काफी इजी कर सकते हैं?
हमारे पास दो बेयर मार्केट का डाटा है, 2014 एंड 2018, तो हम उस डाटा पे जाते हैं। जो मैंने डाटा अपने पास नोट करके रखा हुआ है जिस बेसिस पे मैं आगे के एनालिसिस डिफाइन कर रहा हूँ अपनी, वो ये है कि 2014 में जब भी ऑल टाइम हाई बना था और ऑल टाइम हाई बनने के बाद जब भी बेयर मार्केट आई थी तो बेयर मार्केट को बॉटम आने में एग्जैक्टली एक साल लगा था, और एग्जैक्ट डेज देखें तो 364 डेज लगे थे टॉप से बॉटम बनाने में।
ये हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं?
या एग्जैक्टली, बिकॉज इन क्रिप्टो वर्ल्ड बिटकॉइन इज द मेन थिंग, लाइक अगर हमारा 100% है तो आप डोमिनेंस देखोगे 60% 70% सिर्फ बिटकॉइन में ही रियल वैल्यू है. इफ बिटकॉइन मूव मार्केट मूव अप एंड डाउन ऑल द बेस डिपेंड्स ऑन द बिटकॉइन ओनली.
राइट, तो आपने बताया कि 2014 में बिटकॉइन का जो टॉप टू बॉटम था, यानी जो बिटकॉइन का मान लीजिए अगर $1,000 प्राइस था, इसको नीचे आने में 364 दिन लगे.
राइट,
बट ये कितना परसेंट क्रैश हुआ था तब?
80% 80-85% उस टाइम पे भी. तो ये बहुत ज्यादा क्रैश हुआ था उस टाइम पे भी. और सिमिलर डाटा ये मैच करता है 2018 को भी.
Okay.
जो बहुत ज्यादा शॉकिंग भी है और बहुत ज्यादा थर्ड मार्केट को प्रिडिक्ट करने में हेल्प भी करेगा हमें.
ओके, तो 2018 का ऐसा आपने क्या डेटा नोटिस करा?
सेम डाटा जैसे 2018 में क्या हुआ था कि ऑल टाइम हाई जो हमारा क्रिएट हुआ था 19,000 समथिंग क्रिएट हुआ था और मार्केट क्रैश करी थी 85% और उसको भी जो डेज लगे थे और वो लगे थे अप्रोक्सीमेटली 413 डेज. तो वो अप्रोक्सीमेटली 21-22 महीने का डिफर है और वो बेयर मार्केट में बेसिकली रहता ही है बिकॉज क्योंकि ये इसको कोई रन नहीं कर रहा, सेंट्रलाइज नहीं, तो इसको ऊपर 1-2 महीना आप एडजस्ट मान के चल सकते हो.
ओके, सो फॉर एग्जांपल आप ये बोल रहे हैं कि 2014 में 364 डेज लगे जो लगभग एक साल हो गया पूरा, और 2018 में लगभग 13.5 महीने जो हमारे बेयर मार्केट के लिए लगे. तो अभी अगर हम टॉप टू बॉटम ये नोटिस करते हैं तो 2018 में क्या बिटकॉइन तब भी 80-85% क्रैश हुआ था या इससे ज्यादा कुछ था?
एग्जैक्टली, उस टाइम पे भी जो बिटकॉइन क्रैश किया था वो 80-85% क्रैश किया था.
ओके, तो अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो आपको 2022 बेयर मार्केट के लिए क्या लगता है कि बॉटम कब आएगा और बिटकॉइन कितना टोटल डाउन जाएगा?
विद सिमिलर डाटा जो हमें दो लास्ट बेयर मार्केट से डाटा मिला है और इसका बेयर मार्केट का जो इस टाइम ऑल टाइम हाई था वो 69,000 समथिंग था इस, और अगर हम इसका 80-85% डाउन देखें तो इसका जो बॉटम बनता है वो 10-14,000 के बीच में बनता है इस पास डाटा के बेस पे जो लास्ट दो टर्म्स का बेयर मार्केट का हमारे पास डाटा है.
ओके, और यहाँ तक पहुँचने के लिए एवरेज नंबर ऑफ डेज आपको कितना लगते हैं?
जो एवरेज डे है वो हम 380s के एवरेज ले लेते हैं लास्ट टू बेयर मार्केट का बिकॉज उसमें 364 था और इसमें 413 था, तो एवरेज 380 डेज ले लेते हैं. तो वो 380 डेज इस साल के नवंबर या दिसंबर में बनते हैं. एग्जैक्टली.
जी जी, तो क्योंकि हमारा जैसे बिटकॉइन मेरे हिसाब से 13 या 14 नवंबर 2022 को 69,420 जो मीन नंबर भी है तब ऑल टाइम हाई उसने क्रिएट किया था. अगर हम 13 महीने देखते हैं तो ऑलमोस्ट एंड ऑफ ईयर यानी 15 से 20 दिसंबर के अराउंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन का बेयर हो सकता है.
एग्जैक्टली.
ओके, पर जैसा अभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं दिस टाइम इट्स डिफरेंट,
या
बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट इंडस्ट्री के बोलते हैं कि इस बार जो बॉटम होगा वो आगे पीछे हो सकता है, इसका क्या मतलब है और इसके क्या रीजंस हैं?
एक या दो महीने का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा कॉमन है इसमें बेयर मार्केट में, क्योंकि आप लास्ट टाइम भी देखेंगे तो उसमें एक साल चला था तो इसमें 50-60 डेज का डिफरेंस था, तो हो सकता है इस बार भी 50-60 डेज का डिफरेंस आ सकता है. और ये बेयर मार्केट डिफरेंट इसलिए है क्योंकि 2018 या 2014 में इंटरनेशनल वॉर का कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएटेड नहीं था लाइक रशिया यूक्रेन वॉर विच इज गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 4 मंथ्स, है ना. तो ये जो सिचुएशन है ये 2018 में क्रिएट नहीं हुई थी. और इस बार डोमिनेंस जो BTC की डोमिनेंस है वो भी बहुत शॉकिंगली वर्क कर रही है लास्ट टू बेयर मार्केट से. 2014 में जो डोमिनेंस था BTC का तो वो था 60-70% के बीच में, और 2018 में भी जो BTC का डोमिनेंस था वो 60-65% के बीच में ही था. बट जो इस बार है 2022 में डोमिनेंस जो अभी मूव कर रहा है वो 43% के आसपास है जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है. डैट इज़ वाई ये बेयर मार्केट जो है वो बहुत डिफरेंट है पास बेयर मार्केट से.
ओके, तो मेरे को आपकी बोली बात सुन के तीन चीज़ें समझ आई. पहला, हो सकता है कि जो हमारा बॉटम हो वो 50-60 दिन आगे भी हो सकता है, पीछे होने के चांसेस कम है क्योंकि अगर पीछे होने के हिसाब से हम देखें तो 20th December से 20th October और करेंटली बिटकॉइन का प्राइस लगभग $19,000 चल रहा है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि बॉटम दिसंबर से लेके फरवरी के अराउंड कहीं ना कहीं क्रिएट होगा. एग्जैक्ट बॉटम प्रेडिक्ट करना तो पॉसिबल नहीं, बट हम ये रेंज मान के चलते हैं. सेकेंड, आपने बोला इस बार वॉर चल रही है वो सिचुएशन बहुत डिफरेंट है. एंड थर्ड, बिटकॉइन डोमिनेंस. तो मैं एक बार लिसनर्स को बिटकॉइन डोमिनेंस क्विकली समझा देता हूँ. बिटकॉइन डोमिनेंस मींस कि अगर $100 बिलियन मार्केट कैप है क्रिप्टो करेंसी मार्केट की और उसमें बिटकॉइन डोमिनेंस 50% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिटकॉइन की मार्केट कैप $50 बिलियन है और बाकी सारे कॉइन्स के मिलाकर भी $50 बिलियन है. पर जैसा आपने निखिल बोला कि इस बार बिटकॉइन डोमिनेंस 43% है, हम बिटकॉइन डोमिनेंस को अगर ऑब्जर्व करते हैं लास्ट टाइम के हिसाब से तो काफ़ी कम है, मतलब लगभग 20% कम है. तो आपके हिसाब से क्या बिटकॉइन डोमिनेंस अपना मैक्स आउट हो चुका, क्या वो टॉप रीच कर चुका या अभी इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं?
इससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये डोमिनेंस कम क्यों है, उसके पीछे रीजंस भी क्या हैं। बिकॉज 2018 में वेब 3 के जो प्रोजेक्ट्स थे वो इतने ज़्यादा बाहर नहीं आए थे, डेवलपर्स ने इतना ज़्यादा काम नहीं किया था वेब 3। बट 2021 या 22 में अब वेब 3 के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत फास्टली ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें दूसरी मार्केट जो है वो भी ग्रो हुई है, लाइक NFT मार्केट, मेटावर्स, गेमिंग मार्केट, लाइक प्ले टू अर्न, सो ऐसी बहुत सारी डीफाई यू कैन से राइट, सो ऐसी बहुत सारी न्यू टर्म्स इंक्लूड हुई हैं क्रिप्टो वर्ल्ड में जो 2018 में नहीं थी और लोग इस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी कर रहे हैं। जैसे DeFi पे बहुत सारे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं बिकॉज इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, यू आर द मेन ओनर। तो इस रीज़न से डोमिनेंस कम होने का ये बहुत ज़्यादा मेजर रीज़न है।
ओके जी हाँ, बिल्कुल ये सही चीज़ है। और अभी मैं कुछ दिन पहले खुद ही डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस देख रहा था और मैं देख रहा था काफ़ी इनोवेशन आ चुकी। अभी भी जो TVL लॉक्ड है DeFi के अंदर वो काफ़ी हाई है। आपने प्ले टू अर्न गेम्स बोला, प्ले टू अर्न गेम्स भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्च होती रहती हैं, काफ़ी यूजर्स हैं। NFTs वगैरह भी अलग अलग अगर हम देखें तो ऑफकोर्स वॉल्यूम ड्रॉप हुई है, बट अभी भी NFTs को लेके जो कोर क्रिप्टो यूजर्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों को भी नोटिस करते हैं तो हाँ, बिटकॉइन डोमिनेंस कम क्यों है वो सेंस बनाता है। पर फिर पिछले डेटा को देख के हम क्या एस्टिमेट लगा सकते हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस कहाँ तक जाएगा?
मेरे हिसाब से बिटकॉइन डोमिनेंस अभी इंक्रीज़ हो सकता है, और जितना मेरे एनालिसिस हैं मेरे हिसाब से ये 50-55% तक जा सकता है। और उसका रीज़न ये है कि दूसरी मार्केट पे जैसे NFT मार्केट है या मेटावर्स की मार्केट है, उस पर वो न्यू मार्केट है, तो वहाँ से यूज़र्स अभी निकलेंगे और वो यूज़र्स अपना मनी को ट्रांसफ़र करके बिटकॉइन की तरफ लेके आएंगे। इस रीज़न से बिटकॉइन का डोमिनेंस इंक्रीज़ हो सकता है।
ओके और जैसा आपने बोला कि यूजर्स अपने पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं, या मैं उसको रोटेशन भी बोलता हूँ और काफ़ी लोग भी रोटेशन ट्रांसफ़र वर्ड यूज़ करते हैं, हमारे लिसनर्स को ये रोटेशन ट्रांसफ़र उतना नहीं पता और आप जैसे इस चीज़ में काफ़ी वेल एक्सपीरियंस हैं, तो अगर आपको ये चीज़ किसी लेमैन को समझानी है कि ये रोटेशन या ट्रांसफ़र क्यों होता है, कब होता है और इसका क्या मीनिंग होता है, तो आप उसे क्या बताएंगे?
हमें इसके लिए एक्टिव वर्ड यूज़ करना चाहिए, एक्टिव इन्वेस्टर, जो अपनी इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करके पैसों को मूव करता है। लाइक उसको पता है कि अभी बिटकॉइन मूव करना है तो ही पुट देयर मनी इन बिटकॉइन ओनली। अब उसको लगता है कि इथेरियम मूव कर सकता है तो ही मूव इट्स मनी फ्रॉम बिटकॉइन टू इथेरियम। ऐसे ही बहुत सारे और भी एंगल्स हैं, US स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, गोल्ड, ETF, म्यूचुअल फंड्स। तो इस तरीके से जो एक्टिव इन्वेस्टर होता है वो अपने पैसे को मूव करता है टाइम टू टाइम, इस रीजन से।
ओके मतलब एक्टिव इन्वेस्टर जो काफी ज्यादा टाइम अपना क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है डेली बेसिस पर, हो सकता है वो क्रिप्टो फुल टाइम भी कर रहा हो।
एग्जैक्टली
पर मान लीजिए जो एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है आपकी तरह या मेरी तरह, जो पैसिव इन्वेस्टर या सेमी एक्टिव इन्वेस्टर है, वो इस पूरे डेटा को देख के क्या इंटरप्रेट कर सकता है, क्या मान सकता है कि बुल मार्केट आएगी, कब आएगी, या उससे पहले बेयर मार्केट कब तक और आने वाले टाइम में रहेगी?
ये मैं पास डाटा के बेस पे ही कहता हूँ कि बुल मार्केट किस टाइम पे आती है, बेयर मार्केट कैसे आती है। तो 2014 या 2018 का डाटा देखे तो मार्केट ऐसे वर्क करती है कि स्टार्टिंग के 2 ईयर्स जो होते हैं वो बुल मार्केट के होते हैं, फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स जो होते हैं वो बेयर मार्केट के होते हैं, फिर उसके बाद एक टाइम आता है हालविंग का, बिटकॉइन हालविंग का, जिसमें रिवॉर्ड कटिंग होती है, जिससे जो भी माइनर्स होते हैं बिटकॉइन माइनर्स उनके रिवॉर्ड्स कट होते हैं और बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, देन अगेन उसके बाद बुल रन स्टार्ट होता है। तो अभी उस सिचुएशन को इस 2022 की करंट सिचुएशन पे पुट करके देखें तो हमारा 2 साल का बुल रन हो चुका है, अब बेयर मार्केट का 1 साल मतलब 6-8 महीने कह सकते हैं कि हो चुके हैं, और अगले साल तक हमारा ये बेयर मार्केट की तरह ही चलेगा और ये हालविंग के टाइम उसके बाद से इसका बुल रन स्टार्ट होगा।
ओके तो अगर हम देखें अभी 2022 में 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर पूरा 23 एंड 24 में हाविंग लगभग मई के अराउंड है।
Exactly.
तो हमारे पास लगभग 17 महीने यानी 1.5 साल और है जहां पर कुछ पीरियड बेयर मार्केट का हो सकता है और हो सकता है कुछ पीरियड इसमें कंसोलिडेशन का भी रहे या हो सकता है बुल मार्केट का भी रहे। बट हाविंग जब भी आती है तो वहां से हमने ये नोटिस करा है कि बिटकॉइन का प्राइस अप्रिशिएट होना शुरू होता है, जैसा आपने बोला कि माइनस के रिवॉर्ड्स कम हो जाते हैं, बिटकॉइन की जो स्कार्सिटी होती है वो और बढ़ जाती है। पर इन सारी चीज़ों के अलावा अगर हम पैटर्न्स की बात करें, जैसे आपने ये काफ़ी पैटर्न्स स्टडी करे हैं कि बिटकॉइन के बेयर मार्केट कैसे चालू होती है और बुल मार्केट कब शुरू होती है, वो पैटर्न्स क्या बताते हैं और वो पैटर्न्स एग्जैक्टली हैं क्या?
पैटर्न्स यही हैं बेसिकली, जो 2022 का जो बेयर मार्केट है ये बेयर मार्केट बहुत डिफरेंट पास्ट वाले से, हमने जैसे पास्ट में अभी बात किया कि इसमें इंटरनेशनल इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल कंट्रीज, बिकॉज अब क्या है कि पहले जो मार्केट कैप थी बिटकॉइन की 2018 में वो बहुत कम थी, और 2022 में जो मार्केट कैप है वो बहुत ज़्यादा 3-4x ज़्यादा है पहले से। तो इस रीज़न से जो है US गवर्नमेंट या वर्ल्ड लेवल की जितनी भी गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सीरियस है, दैट इज़ वाई।
ओके गॉट इट। तो अभी इस बेयर मार्केट में क्या आपने कुछ डिफरेंट चीज़ें ऐसी नोटिस करी, कुछ वियर्ड, कुछ यूनिक, कुछ ऐसी चीज़ें जो बेसिकली इस मार्केट का करंट मिर्च मसाला टाइप्स हों?
राइट, सो इस बेयर मार्केट में जो सबसे डिफरेंट थिंग्स जो हो रही हैं वो ये है, एक तो युगांडा में $12 ट्रिलियन का गोल्ड हमें मिला है, और इस टाइम पूरे वर्ल्ड में जो गोल्ड अवेलेबल है वो $7-8 ट्रिलियन का है,
जिसमें से 11% इंडियन हाउसहोल्ड्स में।
एग्जैक्टली, सो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो हमें इस बेयर मार्केट में लाने का रीज़न हो सकती है, क्योंकि $12 ट्रिलियन इज़ अ रियली बिग अमाउंट, जो आप ये इमेजिन कर लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में $8 ट्रिलियन है, और एकदम से एक दिन कोई हमें एक जगह मिलती है जहाँ पे $12 ट्रिलियन का गोल्ड अवेलेबल है, तो गोल्ड की वैल्यू एकदम से कितनी कम हो जाएगी, और उसी रीज़न से, और गोल्ड इज़ अ मेन एसेट फॉर गवर्नमेंट्स बेसिकली, तो इस रीज़न से ये सारी स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट पे असर कर सकती है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। और इसके अलावा जो चाइना ताइवान की जो सिचुएशन है, और रशिया यूक्रेन की जो सिचुएशन है, तो ये वर्ल्ड लेवल पे भी ट्रेड में बहुत इफेक्ट करती है, तो इस रीज़न से भी इस चीज़ को क्रिप्टो में इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है।
ओके तो जैसा आपने निखिल बोला कि युगांडा में $12 ट्रिलियन का गोल्ड मिला है, यहाँ से मुझे एक चीज रिकॉल होती है कि हम डिजिटल गोल्ड की बात करते हैं, और डिजिटल गोल्ड यानी बिटकॉइन, अभी लोग बोलते हैं कि गोल्ड की तो अडॉप्शन काफी ज्यादा है वर्ल्ड में, हर इंसान को गोल्ड के बारे में पता है, धीरे धीरे लोगों को बिटकॉइन के बारे में भी पता चल रहा है जो डिजिटल गोल्ड है, तो क्या आपके पास बिटकॉइन यानी जो डिजिटल गोल्ड है इसको लेके कुछ ऐसा डेटा है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी यूजर अडॉप्शन कम हो रही है या बढ़ रही है, स्पेशली इन अ बेयर मार्केट?
एग्जैक्टली, मैंने इस पे स्टडी किया था और मुझे जो डाटा मिला वो बहुत शॉकिंग था फॉर रिटेलर इन्वेस्टर्स। उसमें ये डाटा मुझे मिला कि जब भी हमारी बुल मार्केट आती है और जितनी वो अप जाती रहती है, उतने ही बिटकॉइन होल्डर्स के जो वॉलेट होल्डर्स हैं वो कम होते जाते हैं, और जैसी ही बेयर मार्केट आती है जो BTC वॉलेट होल्डर्स हैं उनका परसेंटेज इंक्रीज होता है। तो इससे ये डाटा निकल के आता है कि जैसी बुल मार्केट आती है लोग अपने बिटकॉइन सेल करते हैं, और जैसे ही बेयर मार्केट आते हैं वो अपने बिटकॉइंस की नंबर ऑफ बिटकॉइंस इंक्रीज करते हैं कम वैल्यू पे। तो ये पैटर्न 2014 में भी देखा था, 2018 में भी, और एग्जैक्टली अगर आप ये चार्ट वेबसाइट्स पे जाके देखोगे तो आपको अवेलेबल होगा कि ये सेम पैटर्न इस साल भी बन रहा है।
गाइस, तो जो निखिल बता रहे हैं इसे हम बेसिकली ऑन चेन एनालिसिस बोलते हैं, आप जाके ये स्टडी कर सकते हैं, ग्लासनोड एक बहुत अच्छा फ्री रिसोर्स है जहां पर आप जाके ये स्टडी कर सकते हैं। और मुझे समझ आते हैं जो निखिल ने बताया कि बिटकॉइन के जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो बिटकॉइन को ज्यादा अभी एक्यूमुलेट करेंगे, और जैसे जैसे मार्केट रैली करेगी बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे।
एग्जैक्टली,
तो जैसा कि निखिल आपने बताया कि ये पूरा हम बिटकॉइन का वॉलेट एक्टिविटी चेक कर सकते हैं, पर यहाँ पर एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि ठीक है बिटकॉइन समझ आ गया कि भाई हर लगभग एक साल के अंदर टॉप टू बॉटम जाता है, 80-85% गिरता भी है, पर अगर हम हिस्टोरिक डेटा को देखें तो इसको वापस उठने में कितना टाइम लगता है?
यस, ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस नहीं किया, तो इस पॉइंट में हम ये बात कर सकते हैं कि जो टॉप से बॉटम आता है उसमें एक साल लगता है, और बॉटम से ऑल टाइम हाई तोड़ने में जो पिछले दो बेयर मार्केट का डाटा है वो ये कहता है कि बॉटम से टॉप बनाने में 2 साल फिर से लगते हैं, तो ओवरऑल 3 ईयर्स का ये साइकिल होती है। फर्स्ट ईयर जो होता है टॉप से बॉटम आने का, देन नेक्स्ट 2 ईयर्स फॉर बॉटम से टॉप पे जाने का।
मतलब अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए दिसंबर में या फरवरी 2023 तक बिटकॉइन अपना बॉटम क्रिएट कर लेता है, तो लगभग फरवरी 2025 तक वो अपना नया ऑल टाइम हाई भी क्रिएट कर सकता है।
एग्जैक्टली,
और अगर हम नोटिस करते हैं तो अप्रैल 2021 में ही बिटकॉइन ने $64,000 का अपना नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, और उससे पहले 2017 के अराउंड भी दिसंबर में बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था।
एग्जैक्टली,
तो ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही निखिल आपके साथ, आपने काफी अच्छे डेटा पॉइंट्स शेयर करे। मेरे पास और भी काफी सवाल हैं यहाँ पे, कुछ कॉइंस को लेके, कुछ और ट्रेंड्स को लेके, कुछ लोगों के क्वेश्चंस जिन पे मैं आपसे और चर्चा करना चाहूंगा, पर वो सारा हम बचा के रखेंगे अगले एपिसोड में। क्रिप्टो करेंट का अगर आपने ये एपिसोड सुना तो आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी, एक डेटा का अलग रूप देखने को मिला होगा, अगर आप ये एपिसोड सुन के क्यूरियस हो चुके और आपके पास क्वेश्चंस हैं तो आप निखिल को रीच आउट कर सकते हैं। तो निखिल, अगर लोगों को आपसे कनेक्ट करना है तो वो कौन से प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर सकते हैं और आपका यूजर नेम क्या है?
आप मेरे साथ ट्विटर पे कनेक्ट कर सकते हैं और मेरा यूजर नेम है लर्न विद निक।
ओके, तो जैसा कि गाइस आपने सुना, आप निखिल से ट्विटर पे कनेक्ट हो सकते हैं। इस एपिसोड में हमने बिटकॉइन, बेयर मार्केट, बुल मार्केट के बारे में काफी चीजें सीखी और बातें भी करेंगे पार्ट टू ऑफ दिस एपिसोड में। उसके लिए सुनते रहिए क्रिप्टो करेंट। मैं आपसे मिलूंगा क्रिप्टो करेंट के अगले एपिसोड में।
दिस वॉज एन HT Smartcast ओरिजिनल।
HT Smartcast।